मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 31 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की आगे जो 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेज हैं उनके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन नौजवान साथियों के नाम हैं शंकर ठाकुर दिल्ली से, राजेश कुमार गुप्ता प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, शुभम मेश्राम भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रदीप कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश से, ऋचा फरीदाबाद हरियाणा से, किरण सिवान बिहार से, मानसी यमुनानगर हरियाणा से और लव पाहू आपका गांव है घगवाल जिला सांबा जम्मू और कश्मीर से। दोस्तों एक बार मैं फिर से डेट रिपीट करना चाहूंगा जो एकेडमी ने अपने आगे की क्लासेस के लिए निर्धारित किया है और वह डेट है 28 अक्टूबर से 11 नवंबर 2020 और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे इस व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जो वर्तमान में स्थितियां दिखाई दे रही हैं उन स्थितियों के संदर्भ में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आपका निर्णय क्या होना चाहिए। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी मैं दूसरी घटनाओं की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। देखिए इस दौर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं सच पूछे तो सारी घटनाएं कोरोना वायरस में सिमट कर आ गई हैं। चाहे आप न्यूज चैनल देखें, चाहे आप रेडियो न्यूज सुने, चाहे आप अखबार पढ़ें, हर जगह आपको कोरोना वायरस छाया हुआ दिखाई दे रहा है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ये जो चुनौती है ये केवल भारत की ही नहीं है, ये केवल चाइना की ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक जबरदस्त किस्म की चुनौती उठ खड़ी हुई है। और ऐसा लगता है कि इस तरह की चुनौती शायद पहली बार दुनिया देख रही है। हमारे यहां फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, हमारे यहां मतलब इस धरती पर हुआ, लेकिन शायद उस समय भी इतने बड़े संकट नहीं खड़े हुए होंगे जितने की संकट आज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी की चिंता कोरोना वायरस को लेकर है। कोरोना वायरस के 4-5 पॉइंट्स मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, इन पर मैं अभी बातें नहीं करूंगा, लेकिन आगे के जो मेरे डेली ऑडियो लेक्चर होंगे डेफिनेटली उनमें मैं इन पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से ये थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं। देखिए मैं कोरोना वायरस के संपूर्ण परिदृश्य को आपके सामने नहीं लाऊंगा, मेरा संबंध चूंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से होता है तो इसीलिए मेरा जो फोकस होगा वो उन्हीं बिंदुओं पर होगा। देखिए पहला है लॉकडाउन, है ना, पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है और ये लॉकडाउन केंद्र ने किया है। राज्य अपने अपने ढंग से कर रहे थे, आखिर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश के जरिए पूरे राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन की जो घोषणा जो केंद्र सरकार ने की है वो किस कानून के तहत की है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई वित्तीय आपात स्थिति भी नहीं लगाई गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां जिस कानून का उपयोग किया गया है वह है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगा। इस बीच आप देख रहे हैं कि धारा 144 लगाई गई, फिर कर्फ्यू लगा दिया गया, इस पर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है, क्या कुछ फर्क भी है, थोड़ी सी चर्चा इस पर हम लोग आगे चल करके करेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के बारे में यदि कोई भी कंपनी कोई डोनेशन देती है या इसके लिए कुछ कोशिश करती है यानी कि खर्च करती है इस पर, तो उसे भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शामिल कर लिया गया है, यानी किसे भी उस अकाउंट में डाला जा सकता है। इस पर भी आगे चल करके मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। दोस्तों ये एक अवसर है जबकि आप पूरे प्रशासन के स्वरूप को देख और समझ सकते हैं। प्रशासन कि हमारे पास केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के बाद हम सीधे फिर राज्य सरकारों पर आते हैं और इसके बाद राज्य सरकारों के साथ ही साथ फिर हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये तो एक औपचारिक सिस्टम पूरा का पूरा हमारे प्रशासन का है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी पैरेलल लाइन है जिसमें एनजीओज हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ये एक पैरेलल लाइन है जो प्रशासन तो नहीं करती है, एक तरह से सामाजिक सेवा का काम करती है, लेकिन सामाजिक सेवा कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ी हुई भी है। तो ये दो पैरेलल लाइन आप अभी देख रहे हैं। आप इन्हें वाच कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से वाच कीजिए और देखिए कि किस तरीके से इतने बड़े देश का प्रशासन किया जाता है, किस तरह से वहां कैबिनेट सेक्रेटरी कुछ बात कहते हैं या हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं और पूरी की पूरे देश में वो चीजें लागू हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि प्रशासन के आंतरिक मशीनरी को समझने के लिए यह एक ऐसा अवसर है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरव्यू में आपके काम आएगा, आपके जनरल स्टडीज के पेपर में काम आएगा, फोर्थ पेपर में तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा और यहां तक कि आपके पॉलिटी यानी कि जो सेकंड पेपर है आपका जनरल स्टडीज मेंस का उसमें काम आएगा। और यदि आप पॉलिटिकल साइंस और यहां तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, मेंस का ऑप्शनल है, तब भी यह बहुत काम आने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों मैंने कुछ टॉपिक पर आप का ध्यान आकर्षित किया है, इन पर हम लोग बाद में धीरे धीरे बातें करेंगे। आइए पहले मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपके दिमाग में संदेह होगा कि 31 मई को यह परीक्षा होगी या नहीं होगी, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैं एक दो पॉइंट आपके सामने जो बहुत ही वैलिड पॉइंट हैं वे रखने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो इंटरव्यू हो रहे थे पिछले साल के, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। लगभग 10 दिन के इंटरव्यू बाकी थे, यानी कि ये इंटरव्यू अभी होने हैं। और यूपीएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब प्री एग्जाम होता है उससे पहले वो पिछले साल का फाइनल रिजल्ट घोषित कर देती है, फाइनल रिजल्ट। अब सवाल ये है कि अगर वो 31 मई को एग्जाम ले रही है तो वो फाइनल रिजल्ट घोषित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखिए ऐसा कोई नियम तो नहीं है लेकिन उसने अभी तक ऐसा किया है। अब सिविल इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकालें, क्या प्रीलिम्स को आगे बढ़ा देगी। अब यहां आप दूसरे पॉइंट को देखिए, अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है वो हमारे 14 अप्रैल तक है, ठीक है, चलिए हमें नहीं मालूम कि इसके बाद क्या होगा। अब जो क्या होगा की बात यह है कि इस बीच में यूपीएससी कर क्या रही है। ठीक है इंटरव्यू बाकी है, इंटरव्यू वो बड़े आराम से जल्दी ले सकती है, 10 दिन के अगर इंटरव्यू बचे हैं तो उसे वो 5 दिन में समेट सकती है, ज्यादा बोर्ड बना सकती है या कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकती है। तो उसको जो रिजल्ट डिक्लेयर करने में उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि वो अपनी पहले से तैयारी कर रही हो। और हमें नहीं मालूम कि यूपीएससी क्या कर रही है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रही होगी इसके लिए, क्योंकि उसके दिमाग में भी ये बात तो है। अपनी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वो कोई कदम जरूर उठा रही होगी। मेरे दिमाग में एक बात और भी आती है कि इस बीच में यूपीएससी के कुछ और भी एग्जाम होने थे और उसके बारे में यूपीएससी ने साफ साफ बता दिया कि ये एग्जाम स्थगित किए जाते हैं, मतलब उनकी घोषणा कर दी स्थगन की। लेकिन आप देखिए कि 31 मई के एग्जाम के स्थगन की घोषणा अभी तक यूपीएससी ने नहीं की है कि ये एग्जाम आगे बढ़ाया जाएगा, अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता, ऐसा कुछ भी यूपीएससी ने नहीं कहा है। इसका मतलब है कि यूपीएससी के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात तो है कि यदि स्थितियां जल्दी से सामान्य हो जाती हैं तो फिर वह बकायदे इस एग्जाम को 31 मई को कंडक्ट कर लेगी, क्योंकि एक बार अगर वो इस एग्जाम को टालती है तो देखिए फिर मेंस भी टलता है, पूरा एक साइकिल गड़बड़ होता है। हालांकि ठीक है उस साइकिल को कवर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम तार्किक आधार पर सोचते हैं तो दोनों स्थितियां हमारे सामने हैं। चूंकि यूपीएससी ने कोई अभी तक घोषणा नहीं की है तो आपको संभावना रखनी चाहिए कि परीक्षा हो सकती है। और दूसरा, चूंकि आगे आने वाली स्थितियां अभी बहुत अस्पष्ट हैं कि जो लॉकडाउन है उसकी डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या होगी, कोरोना वायरस का किस तरह का दुष्प्रभाव इस देश पर होगा, हम इसको कितना जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे, इन सब पर डिपेंड करेगा कि अंततः यूपीएससी क्या निर्णय लेती है। दोस्तों अब मैं आता हूं आपको क्या करना चाहिए। देखिए यूपीएससी अपने ढंग से निर्णय लेगी, क्योंकि देखिए पूरे देश में सेंटर बनाए जाते हैं और अभी पूरा का पूरा जो स्टेट का अमला है कोरोना वायरस में लगा हुआ है, उन्हें सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो दिमाग में कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति तो है कि वो कंडक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले एक बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट के रूप में, एक ईमानदार स्टूडेंट के रूप में आपको संदेह में नहीं रहना चाहिए तब तक जब तक कि यूपीएससी अपनी स्थिति क्लियर नहीं कर देती। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि नहीं एग्जाम 31 मई को होगी, इसी को मान करके आपको अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर 31 मई को हो गया और अभी आपने ढिलाई दे दी तो फिर आप उसे कैसे कवर करेंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और ये एग्जाम की डेट बढ़ा दी गई तो आप क्या खोएंगे, आप मुझे बताइए कि आपका क्या नुकसान होगा। आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं गेनर ही होंगे, आपको लाभ ही मिलेगा कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, इसके बाद जो एक महीने, दो महीने, तीन महीने, जितनी भी दिन एग्जाम आपके बढ़ते हैं उसमें आप रिविजन करते चले जाइए, आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि तैयारी कितनी अच्छी हो सकती है इसकी कोई सीमा नहीं है। और मान लीजिए कि आप ढिलाई दे देते हैं, 500,000 स्टूडेंट बैठते हैं, इसमें मान लीजिए कि 20,000 स्टूडेंट भी ऐसे हुए जो ये मान करके चल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो 31 मई को एग्जाम देंगे, होगा ये, तैयारी इसी तरह से करें, फिर आप उनके सामने कैसे टिकेंगे? तो दोस्तों, आपको यहां बिल्कुल एक आर्मी मैन की तरह काम करना चाहिए। सिपाहियों को नहीं पता होता है कि युद्ध होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो अभ्यास लगातार करते रहते हैं, हर क्षण तैयार रहते हैं। इसी तरह से मेरी एक जो विनम्र सलाह है अपने प्रिय श्रोताओं के लिए, अपने प्रिय स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि आपको अपनी तैयारी में कोई ढील नहीं देनी चाहिए। बल्कि जो आपको ये अवसर मिला है कि आप बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, सिनेमा नहीं देख सकते थिएटर में जा करके, तो बेहतर होगा कि उस समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हुए अपने को एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ बनाएं। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग समय आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दोस्तों में यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।